الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہ ان کی کتاب امور خانداری میں حسن انتظام میں سے ریلیشن شپ مینجمنٹ یعنی رشتہ داریاں نبھانا کا موضوع پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو آخری بات ہم نے پڑھی تھی پیج نمبر 126 کے اوپر وہ تھی کہ عورت کی زندگی میں چار اہم رشتے ہوتے ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا تعلق سب سے زیادہ اہم. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن حضرت یہاں پر بس ایک یعنی شادی شدہ زندگی کے بعد والے باتوں کو ہی ڈسکس کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا. تو میاں بیوی کا تعلق، پھر سسرال والوں سے تعلق، اور اس میں سے بھی خاص کر کے ساس کے ساتھ تعلق الگ سے بیان کیا، اور چوتھا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ. تو اب ایک ایک کر کے ان تعلقات کے بارے میں مزید تفصیل بیان فرماتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آتا ہے خاوند سے تعلق. تو فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اپنا تعلق کیسے رکھے. اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہیں جو اس تعلق کو استوار رکھنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت یہاں پر چند بنیادی باتیں خالی ذکر کر رہے ہیں، اگرچہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ مزید باتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جو کہ حضرت نے اپنے ایک دوسرے سلسلہ بیانات مثالی بیوی کے نام سے جو سوری مثالی عورت کے نام سے جو شائع ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے اکثر جو اس کلاس کے اندر بھی شامل تھیں مثالی عورت کی کتاب کے اوپر جو ہمارے یہاں پھر تشریحات ہوئی تھیں، تو ان میں ایک مستقل بیان تھا مثالی بیوی کا. ٹھیک ہے، تو اس میں تو پھر بہت ساری تفصیلات حضرت نے بیان فرمائی تھیں، اور اس عاجز نے بھی اپنے وسعت میں جتنا ممکن ہو سکا تھا تو اس کے اوپر پھر آپ کے سامنے اس کو سمجھانے کی کوشش کری تھی. تو اس کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ الحمدللہ ساری ہوئی تھیں، اور وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. واٹس ایپ گروپ کے اوپر جو لوگ اس وقت شامل تھے تو ان کے واٹس ایپ کے اندر بھی وہ ساری ریکارڈنگز موجود ہوں گی. تو یہاں پر جو ہے نا خاوند سے تعلق کا جو موضوع ہے، تو یہ سمجھنے کے مثالی بیوی کی کا ایک ٹریلر ہے، یہ مثالی بیوی کا ایک بہت ہی اختصار کی شکل ہے یہ. ٹھیک ہے، ایک سمری سمجھ لیں اس کی. تو ہم اب دیکھیں گے کہ اس میں وہ اسی حد تک ہی رہے جو کہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یا ساتھ ساتھ کچھ مزید باتیں بھی کرتے جائیں جو کہ مثالی بیوی کے ٹاپک میں آلریڈی ہو چکی ہیں، یا یہ کہ دیکھتے ہیں ریکارڈنگ سے موجود ہیں تو اگر یاد رہا تو کلاس کے بعد انشاءاللہ ان کا جو لنک ہے وہ بھی گروپ کے اوپر شیئر کر دیں گے. تو جو لوگ پہلے اٹینڈ نہیں کر سکیں تھیں تو ان کو چاہیے کہ اس کو ضرور سے سن کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. جو پہلے کر چکی تھیں وہ بھی دوبارہ اس کو ریپیٹ کر سکتی ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ جو ہماری تکرار والی خواتین ہیں تو انہوں نے نہ صرف کہ ان کو ایک دفعہ سنا بلکہ پھر اپنے تکرار کلاسز کے اندر ایک ایک بیان کو ڈسکس بھی کیا تھا، اور اس کے نوٹس بھی بنائے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا خیر بھی عطا فرمائے، اور ان کو علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی عطا فرمائے. تو یہاں پر جو بنیادی باتیں حضرت نے لکھی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے کمیونیکیشن، اظہار مدعا کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے، اپنے مدعا یعنی جو آپ کہنا چاہتی ہیں، دعویٰ کرنا چاہتی ہیں، اس کا اظہار آپ کیسے کرتی ہیں، اس کو انگریزی میں کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کمیونیکیشن. ٹھیک ठीक है, बातचीत से, गुफ्तगू सुनीद से जो है ना, फिर बात स्टार्ट होती है, आप कुछ कहती हैं, अगला बंदा सुनता है। ठीक है, तो जैसे पिछली क्लास में भी, पता नहीं वो तफसीर वाली क्लास थी या कौन सी क्लास थी, में बात हुई थी कि हर चीज जो है ना, ये सुनने से शुरू होती है। ठीक है, इल्म भी सुनने से मिलता है और अमल जो है वो इल्म की बुनियाद पर इंसान करता है, तो इब्तिदा कहाँ से हुई, सुनने से इब्तिदा हुई। तो पहली बात जो है ना वो कम्युनिकेशन है, अपने खाविंद के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर याद आया कि पिछली जो हमारी इसी क्लास में जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था ना, वो था हार्ट्स इंटेलिजेंस के ऊपर ना, राइट, ये दिल की तब्दीली से जज्बात में तब्दीली आती है। दिल जो है उसका अपना एक ब्रेन होता है और उसके बाकायदा यानी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक कार्डियो इलेक्ट्रो फील्ड जिसको कहते हैं। तो क्या बात करी थी कि दिल जो होता है वो दूसरे दिलों के ऊपर असर डालता है और दूसरे दिलों से असर लेता है। तो यहां से बात चली थी फिर सोहबत के ऊपर, ये सोहबत कितनी अहम चीज होती है, और फिर सोहबत में हमने इसकी जो एक इंतहाई शक्ल बताई थी वो दोस्ती कहलाती है। ठीक है, यानी जो कि सबसे गहरी सोहबत होती है कि जिसमें लाजिमन एक दिल का दूसरे दिल के ऊपर असर हो रहा होता है। तो दोस्ती के बारे में हमने काफी बातें करी थी पिछली वाली बुध की क्लास के अंदर। तो उससे फिर जो बात आगे बढ़ती है यहाँ पर, वो ये है कि एक शादीशुदा औरत की तो सबसे अच्छी दोस्ती जो है ना, इंसानों में से उसके खाविंद के साथ होनी चाहिए, उसके शौहर के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर तो कम्युनिकेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि भाई दोस्त के साथ कम्युनिकेशन के अंदर कोई मुश्किल ही नहीं होती, इंसान का दिल चाहता है बात करने का। ठीक है, तो शौहर के साथ दोस्ती होगी तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, तो फरमाते हैं कि अपने खाविंद के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए, अगरचे कि अपने बाकायदा दोस्ती के ऊपर एक अलग टाइटल बांधा है, एक अलग उनवान बांधा है जो कि आखिर में आता है, उसमें तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे वहां पहुंचते पहुंचते तक। इस वजह से हम थोड़ा सा अभी ही से डिस्कस कर दिया, इसको मेंशन कर दिया कि खाविंद के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। खाविंद के साथ इजहार को हमेशा बेहतर किया जाए, मोहब्बत से बात की जाए, बेहतर अंदाज में बात की जाए। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड नीड्स एफेक्टिवली, अपने दिल की जो कैफियात हैं उनको और अपनी जो जरूरियात हैं उनको अच्छे अंदाज से एक्सप्रेस करें, मोहब्बत के साथ खाविंद तक पहुंचाएं। ठीक है, यानी नफरत के साथ ना पहुंचाए, डिस्गस्टिंग एटीट्यूड के साथ जो है वो बात को खाविंद तक पहुंचाने की कोशिश ना करें। मोहब्बत होगी तब वो मोहब्बत के साथ बात पहुंचाएंगे भी, अगर मोहब्बत नहीं होगी तो फिर जाहिर है फिर आप यानी आर्टिफिशियली तो उसको क्रिएट नहीं कर सकते ना, तो इसी वजह से फिर मोहब्बत पैदा करने के जो तरीके होते हैं उनके ऊपर अमल करेंगे तो फिर मोहब्बत पैदा होगी, जब मोहब्बत पैदा होगी तो फिर एक्सप्रेस करना भी उसके साथ आसान हो जाएगा। ठीक है, वरना तो फेक करना पड़ता है ना चीजों को, तो फेक करने से तो फिर मसला हल नहीं होता बल्कि खराब हो जाता है। आगे फरमाते हैं, डोंट ड्रॉप हैंड्स, स्पीक क्लियरली। ठीक है, यानी हिम्मत ना हारें, ड्रॉप हैंड्स का मतलब यहाँ पर हिम्मत ना हारें और वाजह बात करें, जैसे कि हम पीछे भी बात कर चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा, ए ईमान वालों। ठीक है, और इसमें ईमान वालियां भी शामिल है, कि अल्लाह ताला से डरो और सीधी बात किया करो, यानी सीधे तरीके से बात किया करो। ठीक है, वाजह बात करना जो है वो इसकी तफसील है, इसका बयान है सीधी बात का। सीधी बात का मतलब क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन में बात तो नहीं की जाती है ना, ठीक है, कि उसको हम सीधी बात कहेंगे। तो तो सीधी बात का मतलब वाजे बात करो, क्लियर बात करो, ठीक है। और वाजे बात और क्लियर बात का मतलब क्या होता है, चले आप बताएं, वाजे बात का मतलब क्या है, थोड़ा सा क्लास के अंदर क्विज भी तो होते रहना चाहिए ना। वाजे बात, हाउ डू यू एक्सप्लेन व्हाट इज वाजे बात, व्हाट इज वाजे बात, क्या बात है वाजे। वाजे बात वो है जो वाजे हो, तो शुक्र है आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया है, ऐसी बता। वाजे बात किस किस बात को कहते हैं, खुलकर जो क्लियर हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, जो क्लियर हो, ठीक है, तो जो क्लियर हो किसको क्लियर हो, घुमा फिरा कर बात ना करें, ठीक है, घुमा फिरा के बात ना करें। अच्छा, जो सामने वाले को समझ आए, ठीक है, माशाल्लाह, ये सही जवाब है। वाजह बात उसको कहते हैं जो सुनने वाले के लिए वाजह, जो सुनने वाले को समझ में आए, ठीक है ना, ये मतलब है वाजह का। वाजह बात उसको नहीं कहते जो मुझे समझ में आए, ठीक है, या वाजह बात उसको नहीं कहते जो किसी और को समझ में आए, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि यह आयत निकाह के खुतबे में भी शामिल है, कुलू कौलन सदीदा, राइट। तो निकाह की डिग्री इतनी जरूरी है ना, निकाह को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, कुलू कौलन सदीदा। तो वाजह का मतलब है जो कि मुखातब को, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिए वाजह, ठीक है। इसको कुरान मजीद में क्या कहते हैं, वाजह बात के लिए कुरान मजीद में क्या लफ्ज है, हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारी खवातीन है आपस है, ठीक है जी, मुबीन, ठीक है, मुबीन। वाजह को जो है वो मुबीन कहा जाता है, ठीक है। अल बलागुल मुबीन, तो बलाग का मतलब तो होता है पहुंचाना, और मुबीन का मतलब होता है जो कि अगले बंदे को समझ में भी आए, ठीक है। मुबीन उसको नहीं कहते जो मुझे समझ में आए या किसी एक्सपर्ट को समझ में आ जाए, ठीक है, जब वो उस बात को पढ़ेगा, जब वो उस बात को सुनेगा, तब उसको समझ में आ जाए। भाई मैं जिससे बात कर रहा हूं उसको बात समझ में आए ना, ठीक है, तो मैं अपने सुनने वाले, अपने मुखातब के लेवल पे बात करूं या उसके लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करूं। अब उस वो अब ये हम कई दफा इस बात को समझा चुके हैं, कितनी दफा समझाएं, दोबारा इंशाल्लाह दोबारा भी समझाएंगे, कि उसका उस बात को तस्लीम करना या ना करना ये हमारा मसला नहीं है, कि वो उसको तस्लीम करता है कि नहीं करता, ठीक है। तस्लीम करना, एक्सेप्ट करना, उसको मान लेना, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला है पहुंचाना वाजह तरीके से, ठीक है ना। अब अगले बंदे को बात ही समझ में ना आए, ठीक है, तो ये तो हमने अपना काम पूरा नहीं किया ना। अब उसके ऊपर हम जो है वो अल्लाह को इल्जाम ठहराते रहे, अल्लाह को इल्जाम ठहराते हैं ना कि भाई तौफीक देना तो अल्लाह का काम है, नहीं, हमारा काम यह है कि बलागुल मुबीन करें, तौफीक देना अल्लाह का काम है, लेकिन तौफीक तो हर चीज, हमें भी तो बात करने की तौफीक अल्लाह ही ने दी, देनी है ना। तो हम कहें कि अल्लाह ने मुझे तौफीक ही नहीं दी तो मैं क्या करूं, ये हम भी तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह ने मुझे तौफीक ही नहीं दी तो मैं क्यों करूं। उसी तरह सुनने वाला भी कह सकता है अल्लाह ने मुझे तौफीक ही नहीं दी तो मैं क्यों मांगू। तो ये ब्लेम करना, अल्लाह ताला को ब्लेम करना तो फिर बड़ा आसान काम है ना, ये तो अल्लाह को ब्लेम करना हो गया ना कि अल्लाह तौफीक नहीं देता तो इस वजह से वो नहीं करते। भाई हम अपना काम करें, अगले बंदे को अल्लाह पे छोड़े, ठीक है। तो ये उल्टी सीधी बात है जो है ना, वो इनका फायदा नहीं होता। बहरहाल, तो वाजह बात करो, ठीक है, यानी जो अगले बंदे के लेवल के मुताबिक हो, और अगले बंदे का लेवल जो होता है ना वो हर जमाने के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, ठीक है। कुरान मजीद अजीम शान, तक कुरान अजीम शान किसका कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, ठीक है ना, लेकिन क्या उसकी तफसीर नहीं करते हम, तफसीर पढ़ रहे हैं उसकी कि नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये कहें कि नहीं जो मानने वाले मान लेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, अल्लाह की तौफीक को भी तो मान लेंगे वरना नहीं मानेंगे, तो फिर तफसीर क्यों करते हो। राइट। और तफसीर भी कैसी कि जलालैन शरीफ की जो तफसीर थी, जो माशाल्लाह कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं उनको एक बात पता है ना, जलालैन शरीफ भी तो एक तफसीरी की किताब का नाम है ना, राइट। कितने 100 साल पहले वो तफसीर की किताब लिखी गई थी। क्या आज जो है वो हम दरस कुरान के अंदर जलालैन शरीफ की तफसीर पढ़ते हैं कि भाई जलालैन शरीफ की तफसीर हो तो गई बस, अब हम भी जो है वो 21वीं सदी में आगे जलालैन शरीफ ही पढ़ेंगे दरस कुरान के अंदर। हम मारुफुल कुरान क्यों पढ़ रहे हैं दरस कुरान के अंदर? क्योंकि मारुफुल कुरान की तफसीर जो है वो 20वीं सदी के लोगों के हिसाब से की गई थी, ठीक है, तीसरी पांचवी छठी सदी के लोगों के हिसाब से नहीं की गई थी, बल्कि 20वीं सदी के लोगों के हिसाब से की गई थी। और फिर 20वीं सदी की भी तफसीर जो होती है ना, वो भी हम ऐसे नहीं लोगों को कहते कि जी आप पढ़ लीजिएगा, राइट, क्योंकि उर्दू के अंदर तो है आप भी पढ़ लीजिएगा, आप खुद ही समझ लीजिएगा, नहीं, 21वीं सदी के लोग, हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं। अब हम मारुफुल कुरान के ऊपर भी एक एक पैराग्राफ के ऊपर आधा आधा घंटा बात करते हैं, राइट, एक एक पेज के ऊपर कई कई जो है वो दिनों तक बात करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 21वीं सदी के लोगों की समझ अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, तो उनके हिसाब से बात करनी पड़ेगी, चाहे वो माने या ना माने, हमें इससे क्या, लेकिन हमारा काम तो समझाना है ना, ठीक है, वो हम पूरा करें, खाम खा के उल्टी सीधी बात है ना, क्या करें। तो आगे फरमाते हैं कि हिम्मत ना हारे, वाजह बात करें, यही मामला जो है वो बीवी शोहर के दरमियान भी होता है, वाजह बात करें। बहुत सारी औरतें ये गलती करती हैं कि एक लफ्ज बोलकर तवक्को करती हैं कि खाविंद खुद ही समझ जाएगा, उसको समझना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात को तफसील के साथ बताना चाहिए कि मैं ये चाहती हूं। कुरान मजीद में भी औरतों की इस बात को बयान किया गया है, यानी अल्लाह ताला ने एक चीज तो बनाई है, ठीक है ना, किसी की कोई कमजोरी बनाई है, किसी की कोई कमजोरी बनाई है, बल्कि औरतों की क्या कमजोरी बनाई, अल्लाह ताला ने हर मखलूक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी बनाई है, ठीक है, हर मखलूक को जो है अल्लाह ताला ने कमजोरियों के साथ पैदा किया है ना, परफेक्शन तो अल्लाह ताला के साथ है, कमजोरी मखलूक के साथ है, तो सिर्फ औरतों के साथ कमजोरी नहीं है, मर्दों के साथ भी कमजोरियां हैं, इंसान के साथ कमजोरियां हैं, ठीक है, लेकिन कमजोरियों का मतलब ये कोई थोड़ी होता है कि अब आप जो है वो इनको बेहतर करने की कोशिश ना करें, या किसी को जो है वो नसीहत ना करें कि भाई ये तो कमजोर है, इसको नसीहत करने का कोई फायदा नहीं है, उसके हिसाब से नसीहत करें बेशक, लेकिन नसीहत तो करनी है ना, बात तो समझानी है ना, ठीक है। तो औरत के अंदर कमजोरी है, वमई युनश्शउ फिल हिलयति, यानी अल्लाह ताला के ये जो मुशरिकीन जो थे ना, मुशरिकीन मक्का, ये अल्लाह ताला के लिए कहते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं, ठीक है, यानी फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, जिस तरह से ईसाई जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते थे, ठीक है, तो उसी तरह से ये लोग जो है ना फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे, तो अल्लाह ताला जो है ना वो उसके ऊपर बाकायदा जवाब दे रहे हैं कि क्या मेरे लिए बेटियां ही हैं, भाई तुम्हारे लिए तो बेटे हैं, मेरे लिए जो है वो बेटियां हैं, बेटियों की सिफत अल्लाह ताला ने ही तो बनाया ना बेटियों को, अल्लाह ताला बताते हैं बेटियों की सिफत क्या है, अब हमें युनशउ फिल हिलयति के ये जेवरात में पले, जो के जेवरात में पले, वह हुआ फिल खिसामी गैर मुबीन, और जब झगड़ा हो, खिसाम जो है वो झगड़े को कहते हैं, यानी कोई आर्ग्यूमेंटेशन हो जाए तो गैर मुबीन, तो वो अपनी बात वाज़े ना कर सके, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने एक सिफत बयान फरमा दी कि हाँ भाई ये है उनके अंदर एक कमजोरी के वो बात को वाज़े बयान नहीं करते, लेकिन ये इस बहाना नहीं है इस बात का कि जी मैं तो नहीं कर सकती, देखो तो अल्लाह ने कह दिया मैं वाज़े बयान नहीं कर सकती तो मैं तो अब वाज़े बयान नहीं करूंगी, ये इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि अल्लाह ने कह दिया कि मैं तो फिल सिसा में गैर मुबीन हूँ, इस वजह से मैंने टेढ़ी बात ही करनी है, मैंने उल्टी सीधी बात ही करनी है, मैंने जो है वो उसी तरह से मैं भी कह सकता हूँ भाई अल्लाह ने मुझे जाहिल पैदा किया है तो मैं तो इल्म हासिल नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना वो जल्दबाज पैदा किया है तो अब तो मैं जल्दबाजी में ही सारा काम करूंगा, राइट, अल्लाह ताला ने तो इंसान की ये भी सिफतें बताई बताई है ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को जल्दबाज पैदा किया, तो अब हर इंसान का है कि अल्लाह ने मुझे जल्दबाज पैदा किया तो मैं तो अब हर काम जल्दबाजी से करूंगा, क्या ये मतलब है इसका अल्लाह ताला के बता देने का, ये मतलब है कि अब तो बस मैं जल्दबाज हूं, मैं जल्दबाजी में ही सारा काम करूंगा, ठीक है ना। तो आप अपने शौहर को इस बात की छूट देंगे कि वो जल्दबाजी में सारे काम करें क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको जल्दबाज पैदा किया? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो अपने आप को कैसे छूट दे सकती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर से सामे गैर मुबीन पैदा किया, इस वजह से बस मैंने तो उल्टी बात ही करनी है, मैंने तो अनक्लियर बात ही करनी है, राइट। ऐसा ये तो मतलब नहीं है ना इसका अल्लाह ताला के इस बयान फरमाने का ना। तो बहरहाल यहां पर हजरत ने इस बात को क्यों जिक्र किया कि भाई ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि आप जो है वो टेढ़ी बात करती हैं या आप जो है वो गैर वाज़ेह बात करती हैं, बल्कि देखें आपका परवरदिगार भी कह रहा है कि आप गैर वाज़ेह बात करें। अपनी बात को जो है वो बस मुअक्कद करने के लिए अल्लाह ताला के कलाम से यहाँ पे दलील पेश कर दी कि आप मान जाए कि हाँ भाई खाली मैं नहीं हूं जो कि ये बात कह रहा हूं, बल्कि अल्लाह भी ये बात कह रहा है, इसलिए यहाँ पे शायद की जिक्र कर, ठीक है। तो फरमाते हैं कि कुरान मजीद में भी औरतों की इस बात को बयान किया गया है, यानी ये बात करती हैं तो उनकी बात गैर वाज़ेह, इशारों में बातें करती हैं, मर्द इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते तो वो गलत मतलब ले लेते हैं और शैतान इसी वजह से फिर मियां बीवी के ताल्लुकात को खराब कर देता है, ठीक है। मिसाली औरत के बयान में जो मिसाली बीवी का बयान था उसमें तो फरमाया था कि, बल्कि मेरे सामने किताब खुली हुई भी है, मैं जाहिर पूरा तो नहीं उसको रेफर करूंगा लेकिन जितना आएगा जहन में तो उसको रेफर भी कर देंगे, कि जो समझदार खाविंद होते हैं वो तो इस बात को समझते हैं और ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन जो इतने ज्यादा समझदार नहीं होते हैं तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर आपस में एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई अब वो समझदार नहीं है तो आप तो समझदार बन जाए ना, ठीक है। उसने इल्म हासिल नहीं किया, आपने तो इल्म हासिल किया है ना, तो आप जो है वो बात को साफ तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मर्द उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते तो वो गलत मतलब ले लेते हैं और शैतान इसी वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात को खराब कर देता है। तो अपने खाविंद को कभी भी हिंट्स यानी इशारे ना किया करें, बल्कि उसके साथ तफसील से बात करें, उसको समझाएं कि मेरा मतलब नजर क्या है, मेरा मुद्दा क्या है, ठीक है। समझाने की कोशिश करें अपनी तरफ से जितनी कर सकती, उसके ऊपर ब्लेम ना डालें, उसके ऊपर जो है वो ये मत करें कि उसने अपना काम तो नहीं किया तो मैं अपना काम क्यों करूं, ये जाहिलों वाली बात, बल्कि ये बदमाशों वाली बात कि उसने तो अपना काम किया नहीं तो मैं अपना काम क्यों करूं, ठीक है ना। यानी बदमाश का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपके दिल में नफरत पैदा हो जाए इस बात से, इस एटीट्यूड से, ठीक है। ये सिर्फ जाहिलों वाला एटीट्यूड नहीं होता बल्कि ये बदमाशों वाला एटीट्यूड, ठीक है। बदमाश सिर्फ सिर्फ मर्द नहीं होते, बदमाश औरत भी हो सकती है। ये एटीट्यूड सिर्फ बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉट, हरगिज नहीं, ये नहीं करना है हमने कि उसने तो अपना काम किया नहीं मैं अपना काम क्यों करूं, ठीक है। तो कहते हैं कि खाविंद को हिंट्स ना करें, हिंट्स का मतलब ये नहीं है कि कभी आप वो दूर खड़ा हुआ है तो अब आप जो है वो हाथ के इशारे से कोई बात उसको बताने की कोशिश नहीं करें, ये मतलब नहीं है इसका, बल्कि जब आपस में कम्युनिकेशन हो रही हो तो इशारों किनारों में बात ना करें बल्कि वाजह बात करें। कम्युनिकेशन में हमेशा पॉजिटिव टोन, मुस्बत अंदाज रखें। अक्सर औरतें मुस्बत टोन रखने की बजाय ब्लेम इल्जामी बात करना शुरू कर देती हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, फायदे की बजाय उल्टा काम खराब हो जाता है, ठीक है। अब हजरत जी ने तो यहाँ पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं, क्या ख्याल है आप बताएं ना, ये हजरत जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, औरतों के उनकी खामियां बता रहे हैं ना, राइट। और मैं और भी ज्यादा उसको इलेबोरेट कर रहा हूँ, तो हजरत जी तो ब्लेम गेम खेल रहे हैं इधर, औरतों को ब्लेम कर रहे हैं, औरतों को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खुद ही अपनी बात को काउंटर कर रहे हैं कि मुस्बत टोन रखें, मुस्बत टोन रखने की बजाय ब्लेम करना शुरू कर देती हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? हजरत जी बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, हजरत जी जो है वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि ब्लेम गेम ना खेला करो, दूसरी तरफ खुद ब्लेम गेम खेल रहे हैं, क्या ख्याल है? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं ये बताएं, ये आप बताएंगे। और बताएं, कोई और भी बताएं। ये औरतों की क्लास है तो हमारी गलती बता रहे नहीं, औरत की नेचर ही है, मेरे घर में कोई क्लियर बात ही नहीं करता। सही बात है। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि ये कर सही बात कर रहे हैं गलत बात कर रहे हैं, बल्कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन की बात आपसे पूछ रहे हैं कि ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। सही जवाब दे कोई, वो क्या कर रहे हैं, हमारी तरबियत कर रहे हैं। क्यों भाई, आप कौन होते हैं हमारी तरबियत करने वाले हजरत जी? हम अपनी तरबियत खुद कर लेंगे, हम अपनी तरबियत खुद कर लेंगे। आप कौन होते हैं हमारी तरबियत करने वाले? जिस तरह मुझे तरबियत करने की इजाजत नहीं है, उसी तरह आपको भी तरबियत करने की इजाजत नहीं है। ये जवाब होने चाहिए, बल्कि इसका जवाब ये है या इसकी समझ ये है कि जो तरबियत करने वाला होता है ना, उसको ये अथॉरिटी हासिल होती है, उसको ये अथॉरिटी हासिल होती है कि वो गलतियां बताए। जो तरबियत करने वाला होता है, जो उस्ताद होता है, जो शेख होता है, जो मुरब्बी होता है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने शागिर्द को, अपने मुरीद को, अपनी मुरीदा को, अपनी सालिका को, अपने सालिक को, राइट, या अपने मुरब्बा को, नहीं, मुरब्बी का मफूल मुरब्बा, तो जिसकी वो तरबियत कर रहा है उसको उसकी गलतियां बता करके तरबियत करे। ब्लेम गेम भी खेलना पड़े तो ब्लेम गेम भी खेले, बिकॉज उसकी पोजीशन ऊपर वाली पोजीशन है। क्या है? उसकी पोजीशन ऊपर वाली पोजीशन है, ठीक है। लेकिन जिसकी पोजीशन ऊपर वाली नहीं है बल्कि नीचे वाली पोजीशन है, यानी कौन? शागिर्द, यानी कौन? मुरीद, यानी कौन? औलाद, राइट, औलाद, बेटा, बेटी, या अल्लाह ताला ने जो तरतीब बनाई है मियां बीवी के दरमियान, किसकी? अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो औरत की पोजीशन भी नीचे वाली बनाई। अल्लाह की तरतीब से एतराज है तो फिर अल्लाह ताला से निमट लीजिएगा जाकर के। फिर नहीं, मैं आपकी तरतीब नहीं मानती, या मैं आपके कुरान को नहीं मानती, या मैं नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानती कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के कुरान को नकल फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मैं नहीं मानती। मैं कहती हूँ जी निसाउ कव्वामून अला रिजाल, फिर ठीक है, उसके बाद मरने के बाद जो आपके साथ हो तो आपकी मर्जी है। ला इकराह फिद दीन, दीन के अंदर कोई धोज धमकी तो नहीं है कि नहीं मानो, नहीं मानोगी तो भाई अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो मानेगा उसके साथ मैं ये करूंगा, जो नहीं मानेगा मैं उसके साथ ये करूंगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई तरतीब को इनकार करना है तो फिर अल्लाह ताला के साथ निपटना पड़ेगा फिर उसके बाद, ठीक है ना। मानने वालों में से है तो है, नहीं है तो नहीं है, दोनों में एक साथ तो शामिल नहीं हो सकते ना। तो अल्लाह ताला ने तरतीब क्या बनाई है, मियाँ बीवी के दरमियान भी यही तरतीब बनाई है कि मियाँ को ऊपर रखा है, बीवी को नीचे रखा है, जिस तरह उस्ताद को ऊपर रखा है, शागिर्द को नीचे रखा है, ठीक है। बेशक उस्ताद शागिर्द वाला रिश्ता नहीं होता, लेकिन ऊपर नीचे वाला तो है ना, ऊपर नीचे वाला तो डिफरेंस है ना मियाँ बीवी के दरमियान, ठीक है। तो ये जो ब्लेम गेम हजरत जी खेल रहे हैं, हजरत जी हैज द अथॉरिटी टू डू इट, जस्ट लाइक एनी पेरेंट हैज द अथॉरिटी टू डू इट, जस्ट लाइक एनी टीचर हैज द अथॉरिटी टू डू इट, राइट, जस्ट लाइक एनी शेख हैज द अथॉरिटी टू डू इट, लेकिन मुरीद के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो शेख के साथ ब्लेम गेम शुरू कर दे। स्टूडेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो टीचर के साथ ब्लेम गेम शुरू कर दे। औलाद के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो माँ बाप के साथ ब्लेम गेम शुरू कर दे, राइट? उसी तरह बीवी के पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो शौहर के साथ ब्लेम गेम शुरू कर दे। ठीक है, ये अल्लाह ताला का बनाए हुए निजाम है। अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक जो चलता है फिर अल्लाह ताला उसके लिए हमेशा हमेशा की जन्नत का इंतजाम फरमाते हैं। ठीक है ना, उसके लिए वादे, मेरे निजाम के तहत रहो, मान करके रहो, इसके मुताबिक चलो, हमेशा हमेशा की जन्नत। इस दुनिया का तो तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें कितना दिन इस निजाम के तहत अपने आप को चलाना पड़ेगा। हो सकता है 2 दिन में तुम्हारी मुसीबत खत्म हो जाए। ये दुनिया की जिंदगी जिसमें कि हमें अपने आप को बांध करके रखना है, दबा करके रखना है, कितनी लंबी है ये दुनिया की जिंदगी? ये मुसीबत है ना ये दुनिया की जिंदगी, क्योंकि हमें तो पाबंदियों में रहना पड़ता है दुनिया की जिंदगी के अंदर। तो पाबंदियों में जो रहता है इसको मुसीबत कहते हैं कि इसको अय्याशी कहते हैं? पाबंदियों में रहने को मुसीबत कहते हैं कि अय्याशी कहते हैं? मुसीबत कहते हैं भाई, हमारे नजदीक तो इसको मुसीबत ही कहते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसको मुसीबत ही फरमाया, तो दुनिया सिजनुल मोमिन, राइट? दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, क्योंकि कैद खाने के अंदर तो फिर पाबंदियां होती हैं और पाबंदियां तो मुसीबत है। ठीक है, तो ये मुसीबत वाली जिंदगी तो 2 दिन में खत्म हो सकती है, 4 दिन में खत्म हो सकती है, 1 दिन में खत्म हो सकती है, 1 घंटे में खत्म हो सकती है, या बहुत लंबी भी हो जाए तो चंद सालों में खत्म हो जाएगी। मुसीबत वाली जिंदगी चंद सालों में खत्म हो जाएगी, पाबंदियों वाली जिंदगी, लेकिन इन चंद सालों में या चंद दिनों में या चंद महीनों में जो तुमने ये मुसीबत बर्दाश्त कर ली है, पाबंदियां बर्दाश्त कर ली है, इसके बदले में मैं तुम्हें एक खुदाई अता फरमाऊं। खुदाई, आई विल मेक यू ए गॉड, स्मॉल जी के साथ, राइट? GOD, गॉड, स्मॉल डी के साथ, स्मॉल जी के साथ, जहां पे तुम्हारी मर्जी चलेगी, कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी, राइट? जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, जैसे चाहोगे वैसी जिंदगी गुजारोगे, उस जगह को जन्नत कहते हैं। ठीक है, बल्कि कब्र से ही तुम्हारी ये जन्नत के मजे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये तो अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम है ना, कि ऊपर वाले की बात माननी पड़ती है। उसके साथ आप ये तमाशे नहीं कर सकते कि नहीं तुम मुझे ब्लेम करते हो तो मैं भी तुम्हें ब्लेम करूंगा, मैं भी तुम्हें ब्लेम करूंगी। ठीक है, जो अल्लाह ने तरतीब बनाई है उस तरतीब को उसके मुताबिक चलना। ठीक है, तो हजरत जी कोई यहाँ पे सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ऐन तकाजा है हजरत जी की पोजिशन का। ठीक है, कि कहते हैं कि औरतें जो है ना मुस्बत टोन रखने की बजाय ब्लेम गेम शुरू कर देती हैं, इसकी वजह से नुकसान हो जाता है, फायदे के बजाय उल्टा काम खराब हो जाता है। जब भी कोई नीचे वाला ऊपर वाले की नसीहत को, ऊपर वाले की जो समझाना है या उसका बताना है, उसके खिलाफ जो है वो काउंटर अटैक करना शुरू हो जाएगा ना, काउंटर अटैक करना शुरू हो जाएगा, काम खराब। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर ब्लेम यानी इल्जाम तराशी ना करें। इसको अगर आपने इल्जामी बात कर दी, उसको अगर आपने इल्जामी बात कर दी तो वो मनफी मोड में चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो ऊपर वाला है। ठीक है, वो आपके मैसेज को नहीं सुन पाएगा। ठीक है, अब इसको आप हर ऊपर वाले पर भी अप्लाई कर सकती हैं, और खास तौर पे जो है वो खावन बीवी का जो रिलेशनशिप है तो ये ऊपर नीचे वाला रिलेशनशिप, लेकिन इसके अंदर आपको पता है कि जज्बात याद भी इन्वॉल्व, तो गलती हो जाती है। जज्बात याद के अंदर ज्यादा गलती हो जाती है, बाकी रिश्तों के अंदर इतनी गलती नहीं होनी चाहिए। उस्ताद शागिर्द के अंदर जज्बातियत वाला मामला नहीं होता, शेख मुरीद के दरमियान जज्बातियत वाला मामला नहीं होता है। कुछ मुरीद भी ऐसे होते हैं ना जो कि शेख को उठा के सुना देते हैं, अपने जज्बात पे काबू नहीं पा नहीं पा नहीं पा, पा, पा सकते हैं, शेख को उठा के सुना देते हैं। भाई वहां पे जज्बातियत तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, और उस्ताद शागिर्द के दरमियान भी जज्बातियत नहीं है, लेकिन हाँ मियाँ बीवी के दरमियान जज्बातियात हैं, इस वजह से जो है वो उससे भी गलती हो जाती है, इससे भी गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने एक तरतीब बनाई है, उस तरतीब का लिहाज रखना फिर भी जो है ना वो हमारे फायदे के लिए है, वरना हम नुकसान उठाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर आपने इल्जामी बात कर दी ना, ब्लेम गेम शुरू कर दिया, तो वो फिर मनफी मोड में चला जाएगा, फिर वो आपके मैसेज को नहीं सुन पाएगा। ठीक है जी, किसी को कोई सवाल है, एतराज है, तो अभी इसको क्लियर कर लें। आगे कहते हैं कि पिक योर बैटल, उसूली बात को चुने, यानी कोई अगर आपस में यानी इख्तिलाफ राय हो जाए, तो अब सेलेक्ट योर बैटल्स, हर महाज को जो है ना वो खोल करके शुरू ना हो जाए इसके साथ। तो दूसरा पॉइंट है कि पिक योर बैटल, उसूली बात को चुने। अगर खाविन से कभी कोई डिस्प्यूट यानी तनाजा हो, वो ही सही अगर हो ही जाए, तो अपनी उसूली बात को समझाने और मनवाने की कोशिश करें, लेकिन हर हर छोटी छोटी बात पर क्रिटिसाइज करना और इसके साथ मूड बनाए रखना ये अच्छा नहीं होता। तो इस वाले रिलेशनशिप में, क्योंकि भाई डिफरेंस है ना, ऊपर नीचे का तो डिफरेंस नहीं है कोई भी, उस्ताद ऊपर है शागिर्द नीचे है, शेख ऊपर है मुरीद नीचे है, वालिदैन ऊपर हैं औलाद नीचे है, शौहर ऊपर है बीवी नीचे, ठीक है बीवी नीचे है, ठीक है, लेकिन क्या उस्ताद और शागिर्द वाला ताल्लुक इज एब्सोल्युटली द सेम एज शेख और मुरीद वाला ताल्लुक? नहीं, वहां पर तालीमी सिलसिला चल रहा है, यहां पर तज़किया नफ्स वाला सिलसिला चल रहा है। ठीक है, क्या शेख और मुरीद वाला ताल्लुक इज द सेम एज वालिदैन और औलाद वाला ताल्लुक? नहीं, बेशक शफकत दोनों जगह पर है, लेकिन फिर भी फर्क है, वहां पे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, यहाँ पे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो फर्क तो है ना, इस तरह से तो दरमियान आपस में तो फर्क है ना। तो इस वजह से जो नीचे ऊपर ऊपर नीचे वालों के दरमियान जो 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 ट्रांजैक्शन होती है, जो इंटरेक्शन होती है, उसकी नेचर डिफरेंट होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि शेख मुरीद वाले ताल्लुक में और वालिदैन और औलाद वाले ताल्लुक में फर्क है, तो अब जो है ना वो मुरीद जो है वो शेख के ऊपर चढ़ जाए, राइट, या औलाद जो है वो वालिदैन के ऊपर चढ़ जाए, ये तो इसका मतलब नहीं होता ना डिफरेंस का। भाई इसका मतलब खाली ये है कि इनके दरमियान एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, उनके दरमियान एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उस्ताद शागिर्द के दरमियान तालीमी वाली ट्रांजेक्शन है, लेकिन ऊपर नीचे वाला फर्क तो है ना। उसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान भी ऊपर नीचे वाला फर्क डिफरेंस नहीं है, ये है ऊपर नीचे वाला फर्क, लेकिन ट्रांजेक्शन टाइप डिफरेंट है, ठीक है, बातचीत का अंदाज जो है वो डिफरेंट है, और कंडक्शन का अंदाज डिफरेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो तनाजा हो जाए, तो आप उसूली तौर पर, उसूल का मतलब क्या होता है, उसूल का मतलब होता है दलील के साथ, ठीक है, उसूली उसूली मतलब एक लफ्ज है उसूली, कुछ पता नहीं उसूली का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन उसूली, भाई उसूल का मतलब होता है कि जो उसूल मुत्तफ़क़ुन अलैह उसूल है, उस चीज को उसूल कहते हैं ना। उसूल का असल लफ्ज क्या है, बुनियाद, ठीक है, या अगर ये बेहतरीन इसकी जो है ना समझ मिलती है दरख्त से, कि दरख्त की जो जो तना है उसको उसूल कहेंगे, और जो उसकी शाखें हैं उसको फुरू कहते हैं, ब्रांचेस। ब्रांचेस एक दरख्त के अंदर बहुत सारी होती हैं और मुख्तलिफ मुख्तलिफ होती हैं, हर ब्रांच की एक अलग शक्ल होती है, हर ब्रांच के ऊपर अलग किस्म के पत्ते जो है वो अलग जगहों पे लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसूल एक ही होता है, पूरा दरख्त मुत्तफिक है कि मेरा एक ही तना है, एक ही तना है, ठीक है ना, इसके ऊपर सबका इत्तेफाक है कि हाँ सारी ब्रांचेस मुत्तफिक है कि ये एक ही तना है, ये एक ही उसूल है। तो उसूल फिर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जिसके ऊपर लोग मुत्तफिक हो सके, उसको उसूल कहते हैं। जिस बात पर, जिस मौकफ पर लोग मुत्तफिक हो सके उसको उसूल कहते हैं। तो उसूली बात फिर क्या हुई? उसूली बात हुई कि जिसके ऊपर लोग मुत्तफिक, पर ऐसी बात करें उसूली बात है ना, कि भाई अपनी उसूली बात को समझाने की कोशिश करें। भाई उसूली बात उसी को कहते हैं जिसके ऊपर इत्तेफाक राय हो। ठीक है, वो बिल्कुल ही किसी चीज के खिलाफ है, आप बिल्कुल ही उसके हक में हैं, तो ये उसूली बात नहीं होगी फिर, क्योंकि दरमियान में कोई इत्तेफाक है ही नहीं इस बात पे, इसको उसूली बात नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी वजह से जब भी कोई बात की जाती है ना किसी मुखालिफ के साथ, तो उसमें वो वाली बात तलाश करनी होती है जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह। ठीक है, दोनों बात, दोनों का उसके ऊपर इत्तेफाक। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे कि भाई आप भी जानते हैं ना कि जब रोशनी होती है तो चीजें नजर आती हैं, और अगर अंधेरा हो तो चीजें नजर नहीं आती। ये अब आपने बात करी अपने शोर से, ठीक है ना, क्या वो इस बात से इख्तलाफ कर सकता है? वो नहीं करेगा ना इस बात से इख्तलाफ कि रोशनी के अंदर चीजें नजर आती हैं, अंधेरे में चीजें नजर नहीं आती। भाई ये तो उसूल उसूली बात है, ये तो मुत्तफ़क़ुन अलैह बात है कि रोशनी में चीजें नजर आती हैं, अंधेरे में चीजें नजर नहीं आती, इसको उसूल कहते हैं। अब इसकी बुनियाद पर आप अपनी कोई बात पेश करें कि जिस तरह आप भी इस बात को मानते हैं कि रोशनी में चीजें नजर आती हैं, अंधेरे में चीजें नजर नहीं आती, तो उसी तरीके से अगर हम, हमारे पास इल्म की रोशनी होगी तब हमें बात समझ में आएंगी, सही गलत का समझ में आएगा। अगर हमारे पास इल्म की रोशनी नहीं हुई तो फिर हमें सही और गलत का फर्क पता नहीं चलेगा। तो चले इल्म हासिल करते हैं। असल में आप क्या उसको समझाना चाह रही थी कि इल्म हासिल करते, ठीक है ना, बस बैठ करके लूडो नहीं खेलते रहते हैं, क्योंकि लूडो खेलते रहेंगे तो इल्म कैसे हासिल करेंगे, या क्रिकेट देखते रहेंगे तो इल्म कैसे हासिल होगा। तो चलें इल्म हासिल करते हैं, ये अब बात उसको समझाना चाह रही थी आप, लेकिन कैसे बात करी? इस तरह से बात करी कि देखें, अच्छा उसमें दूसरी भी उसूल, दूसरा उसूल भी आपसे बयान कर सकती हैं कि ये भी तो एक उसूल है ना कि इल्म रोशनी है, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि इल्म रोशनी है? तो अगर वो कहे कि हाँ मैं इस बात को मानता हूं कि इल्म रोशनी, फिर आप बात करें कि रोशनी में बात समझ में आती है, अंधेरे में बात समझ में नहीं आती, क्या इस उसूल से आप मुत्तफिक हैं? वो कहेगा हाँ इस उसूल से भी मैं मुत्तफिक। अब दो उसूल आपने आपस में सेट कर लिए कि हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इल्म जो है वो रोशनी है और रोशनी में चीज नजर आती है। अब इसकी बुनियाद पर कंक्लूजन ये कि चले हम इल्म हासिल करते हैं, क्रिकेट देख देख कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, जाया नहीं करते हैं। ठीक है, ये होता है तरीका बात करने का, इसको उसकी बात करते। ठीक है, तो अब मियां बीवी के रिलेशनशिप के अंदर इसकी इजाजत है, उस्ताद शागिर्द में भी इसकी इजाजत होती है कि इवन उस्ताद के साथ भी आप अच्छे अंदाज में उसूली दलाइल पेश कर सके। ठीक है, लेकिन शेख मुरीद वाले ताल्लुक में इसकी इजाजत होती तो है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा एहतियात के साथ इसकी इजाजत होती है। ठीक है, क्योंकि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट होता है आपके मुकाबले, बिल्कुल ही डॉक्टर पेशेंट वाला रिलेशनशिप है ना। अब डॉक्टर के साथ जो है वो मरीज साहब जो है वो डॉक्टर के साथ उसूली बातें शुरू कर दो, भाई आपको तो कुछ अलिफ बे भी नहीं पता उसके इल्म के बारे में, आप उसके साथ क्या उसूली बातें कर रहे हैं? ठीक है ना, आपकी उसूली बातें जो है वो क्या आपकी उसूली बातें, बहरहाल ये चले दूसरी तरफ जरूर डिस्कशन निकल जाएगी, लेकिन मियाँ बीवी के साथ उसूली डिस्कशन होती है, हो सकती है, बल्कि ज्यादा यहाँ पे इसकी इसकी वो होती है, अगरचे के इससे इससे जो है वो तरतीब नहीं बदलती। ठीक है, लेकिन उसूली बातों की गुंजाइश डेफिनेटली है इसके अंदर। तो वे फरमा रहे हैं कि अगर आपका उनसे कोई डिस्प्यूट हो जाए तो अपनी उसूली बात को समझाने और मनवाने की कोशिश करें, ठीक है ना। मनवाने का मतलब यहाँ पर डंडे के जोर पर और चीख चिल्ला करके मनवाना नहीं है, कि उसको थ्रेट करके जो है मनवाने की कोशिश करें कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं औलाद को आपके खिलाफ कर दूंगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं अपने अब्बा को जो है वो बुला लूंगी, भाइयों को बुला लूंगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जो हूँ ना वो आपके दोस्तों में आपको जलील और रुसवा कर दूंगी, आपके खानदान वालों में आपको जलील रुसवा कर दूंगी। ये मनवाने का मतलब नहीं है, इसको यानी थ्रेट करके अगले बंदे को जो है ना वो धमकियां देकर के मनवाना कहते हैं। यहाँ पे हजरत मनवाने का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ये अकली दलाइल के साथ मनवाने की बात कर रहे हैं, अकली और इल्मी दलाइल के साथ मनवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हर हर छोटी छोटी बात पर क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना और उसके साथ मूड बनाए रखना ये अच्छा नहीं। पिक योर बैटल्स का मतलब यह है कि हर डिस्प्यूट को लेके बैठना मत जाए, उसके ऊपर बहस मुबाहसा ना शुरू कर दें या दलाइल शुरू ना कर दें, बल्कि चूज कि भाई कौन सी अहम बात है और कौन सी चीज मैं उनसे बात कर भी सकती हूँ कि वो सुनने के लिए तैयार भी हो, सिर्फ उसके ऊपर बात करें। तो जो उसूली बातें हो उनको आप अपनी बैटल समझकर हामिल के साथ बात करें, बात करें, ठीक है, और इसमें जीतने की कोशिश करें, यानी अकली और इल्मी दलाइल के साथ जीतने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत एहतियात की जरूरत है कि जीतने की कोशिश का मतलब ये नहीं है कि अपनी इल्मियत जो है ना वो जतलाने भी लग जाए उसके ऊपर। इल्मियत जतलाना ये डिजास्टर होता है, ठीक है। इल्मियत जतलाने का मतलब ये होता है कि इस अंदाज से बात की जाए कि बस इल्म तो आप ही के पास है, जैसे कि मैं तो आलिमा हूं, मैंने तो इतने साल किताब पढ़ी है, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, मैंने किताबें पढ़ी, तुम कौन से मदरसे गए थे, मैं मदरसे गई थी, तुमने कौन सी डिग्री हासिल करी है, मैंने डिग्री हासिल करी है, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए, मैं यूनिवर्सिटी गई, इसको जतलाना कहते हैं, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं करें, बल्कि प्योर प्रिंसिपल के ऊपर बात करें बस, विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू योर अचीवमेंट्स, विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट, ठीक है, टू योर अचीवमेंट्स, कि भाई इसको कहते हैं, देखें मिसाल के तौर पर हमने एक छोटी सी ये बात करके इंशाल्लाह मजीद आगे नहीं पढ़ेंगे आज, कि हमने आपके सामने एक मिसाल रखी थी ना कि इल्म नूर है, ठीक है, और नूर के अंदर यानी रोशनी के अंदर चीजें नजर आती, ठीक है ना। ये आपने दो दलीलें पेश करी ना, जिस दलील के ऊपर मुत्तफिक है वो भी, लेकिन जतनाना क्या होगा, जतनाना ये होगा कि आप कहें कि मदरसे की फलानी किताब के अंदर मैंने ये चीज पढ़ी थी कि अल इल्म नूरुन, ठीक है, और ये भी मैंने कहीं, मैंने ये भी मुझे फलानी जगह पे मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि रोशनी के अंदर जो है वो चीजें नजर आती हैं, ठीक। तो ये जो अंदाज है ना बात करने का, यानी आप उसको ये जतला रही हैं कि देखो मैंने ये भी किताब पढ़ी हुई है, मैं फलानी यूनिवर्सिटी में भी गई हुई हूँ, मैंने जो है वो उस बड़े प्रोफेसर को भी सुना हुआ है और मैंने उनसे ये सीखा था और मैं ये और मैं वो, इसको जतलाना कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप एट्रीब्यूट कर रही है ना अपनी अचीवमेंट्स के साथ, ये मत करें, ठीक है, बल्कि सीधी सीधी बस उसूल की बात कर दें जिसके ऊपर वो भी मुत्तफिक है, अल इल्म नूर, बस। हाँ, ये और बात है कि नबी अलैहिस्सलाम की बात है, ठीक है, तो अब अगर वो भी मानते हैं हदीसों को, आजकल तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ना हदीसों को मानते ही नहीं, लेकिन अगर वो हदीसों को मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बातों को मानते हैं कि हाँ नबी अलैहिस्सलाम कहे तो यह सच ही होगा, तो फिर उनको ये कह सकते हैं कि देखें हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अल इल्म, ठीक है ना, तब ये जतलाना नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज जो है ना बाकी सारी बातें मैंने आपके सामने करी है, ये जतलाना कहलाएगा। बिल्कुल भी चतराने की जरूरत नहीं है, इससे अगला बंदा उखड़ जाता है, आपके शौहर उखड़ जाएंगे इससे। पता नहीं क्या आपने आपको समझ लिया। तो अपनी बैटल को जीतने की कोशिश करें, अपनी पोजीशन को जतलाने की कोशिश करें। हाँ, ये बात इन्होंने लिखी यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज में कि आप नहीं जानते, मैं जानती हूं। ये डेडली जुमला होता है, इसके सबसे बेटा हरगिज भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, यहाँ पे हम आपकी क्लास आज को खत्म करते हैं, माफ हो रहा क्या लिखा उन्होंने। इफ दिस जतलानी की मैं बेहतर जानता हूँ, हैपेंस द अदर वे अराउंड कि हस्बैंड जतला के, ये सही है। आप अपनी बात करें ना, अपनी अपनी इसलाह की बात हो रही है, पीछे बात हो चुकी है। बदमाशी वाला जुमला क्या था कि वो जब नहीं काम करता सही तो मैं भी क्यों सही काम करूं, या वो गलत काम करता है तो मैं भी गलत काम करूं, ये बात पीछे हो चुकी है। ये बदमाशी वाला एटीट्यूड होता है, इसको तो आप रहने ही देना। हम तो नहीं अपनी इस इलाके लिए बैठे हैं ना, वो ना करें वो ना करें उनका मसला है भाई, हमने तो वो करना है जो हमें करना है। ठीक है, सलाम वालेकुम।